की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के 23 जून के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। और बड़ी संख्या में आप उपस्थित रहे और सुंदर कीर्तन किया, नृत्य किया, इसलिए भी आपका सबका धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो अधिक मास पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक आषाढ़ महीना चल रहा है, तो आपको क्या सुनने की इच्छा है? हाँ, जगन्नाथ की कथा तो पिछली बार हो गई, पूरी लीला तो। हाँ, पुरुषोत्तम मास के बारे में बताएंगे। कितना लोगों ने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी है? तो पुरुषोत्तम मास जो है ये 32 महीने में एक बार आता है। जो चंद्र होता है ना, चंद्र, वो चंद्र का जो चलने का समय है वो एक चक्र पूरा करता है तो 27 दिन लगते हैं, 27.3 ऐसे दिन लगते हैं। और जो सूर्य का एक समय होता है घूमने का तो उसमें 29.5 दिन लगते हैं। तो एक साल में कुछ 11 महीने का, 11 दिन का गैप हो जाता है। 32 महीने में 30 दिन का गैप हो जाता है। तो हमारे पुराने जो थे ना एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब विद्वान लोग जो थे, उन्होंने फिर इसमें एक महीने को एडजस्ट कर लिया। चंद्र काल गणना और सौर काल गणना, ल्यूनर टाइम टेबल एंड सोलर टाइम टेबल, इसके बीच में जो गैप है वो हर 32 महीने में पूरा कर देते हैं, फिर वो दोनों का समय एक हो जाता है। अब ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, शायद आपको समझ में नहीं आएगी, शायद मुझे भी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। हमारा कहने का मतलब यह है कि अधिक मास निर्माण कैसे हुआ। तो इस महीने में एक विशेष बात होती है जो बाकी महीने में नहीं होती है, वो ये है कि सूर्य हर एक महीने में एक राशि में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं संक्रांति। तो हमको क्या मालूम है मकर संक्रांति साल में एक बार आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनवरी में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन हर महीने में वो दूसरे किसी राशि में प्रवेश करता है, वृश्चिक राशि, धनु राशि। लेकिन अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है। और ये जब सूर्य राशि में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या इतना इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि जब सूर्य हर महीने में जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि में, उस महीने में पवित्र कार्य करने के लिए मुहूर्त निकलते हैं, यही इम्पोर्टेंट है उसका। आपको शादी करनी है, आपके बच्चे का जनेऊ संस्कार करना है, आपको गृह प्रवेश करना है, आपको गाड़ी का उद्घाटन करना है, आपको जेवर खरीदना है, कुछ आपको कुछ बहुत सारे पवित्र कार्य करने होते हैं। तो वो पवित्र कार्यों का जो मुहूर्त है, वास्तु पूजा करनी है आपको, वास्तु यज्ञ करना है, भूमि पूजन करना है आपको बिल्डिंग बांधने के लिए, ऐसे सारे जो पवित्र कार्य होते हैं उनके मुहूर्त तब निकलते हैं जब सूर्य किसी राशि में महीने में प्रवेश करता है। और अधिक मास में वो प्रवेश नहीं करता है, इसका मतलब अधिक मास में कोई मुहूर्त निकलते नहीं है, कोई पवित्र कार्य आप नहीं कर सकते हैं, किसी का विवाह, बेटी का विवाह नहीं कर सकते हैं, दुकान का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, जेवर खरीदने को भी मना कर दिया है, कोई नई चीज़ नहीं खरीदना आपको उसके बाद में, 17 जुलाई के बाद में। और एक बात होती है, क्योंकि हर महीने में सूर्य किसी एक राशि में प्रवेश करता है, इसलिए किसी एक देवता ने हर एक महीने को अपने अंडर ले लिया है, मतलब वो स्वामी है उस महीने के, कोई भी एक देवता उस महीने के स्वामी है। लेकिन अधिक मास में कोई राशि में प्रवेश नहीं होता है, तो किसी भी देवता ने इस महीने को अपना नहीं लिया, उसको ठुकरा दिया और ऊपर से बुला भला भी बताया कि ये महीना कोई मुहूर्त नहीं है, कोई पुण्य इकट्ठा नहीं हो सकता है, कोई कार्य नहीं हो सकता है, ये महीना बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल यूजलेस है, ऐसे करके देवताओं ने उसको त्याग कर दिया। तो ये महीने की जो देवी है, हर महीने की एक देवी होती है, तो ये महीने के रूप में कोई जो देवी थी उसने बहुत निंदा सहन किया, अस्वीकार सहन किया। समझे, आप में कितनी लड़कियां हैं, समझो अविवाहित हैं, हाँ, आपको कोई लड़का देखता है रिजेक्ट कर देता है, दूसरा देखता है रिजेक्ट कर देता है, तीसरा देखता है रिजेक्ट कर देता है, चौथा बोलता है पढ़े लिखे नहीं, पांचवें बोलता है दिखने में अच्छे नहीं, चौथे बोलता, छठवा बोलता है कद में छोटी है, सातवा बोलता है रंग में काली है, समझो ऐसे बोल जाएगा। तो आखिर में आपको क्या लगेगा, अरे हर आदमी आके ठुकरा देता है तो कितना दुख होगा आपको। उस तरह से सभी देवताओं ने न केवल ठुकराया लेकिन बुरा भला भी बताया कि ये नहीं है महीने में, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फल नहीं है, पुण्य नहीं है, मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक दो बार सुनेंगे तो आपको ठीक सहन करेंगे आप, लेकिन बाद में फिर कितने परेशान हो जाएंगे। तो रो रो रोने लगी देवी है बहुत, रो रो के विष्णु के पास गई, सब देवताओं ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मुझे निंदा कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आत्महत्या करने की इच्छा है, मुझे अस्तित्व ही नष्ट कर दो मेरा। तो विष्णु ने क्या किया, वो गौलोक धाम में लेके गए उसको, कृष्ण के धाम में, और कृष्ण को उस देवी को प्रस्तुत किया। तो श्री हरि ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये अधिक मास की देवी है, बहुत दुखी है, इसलिए मैं उनको आपके पास लेके आया हूँ, और उसकी ये समस्या है। तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा किया आपने उसको मेरे पास लेके आया, अगर सारे देवताओं ने उसको ठुकरा दिया है तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसका पति बन जाऊँगा, और मुझमें जितने गुण है वो सब मैं उसको दूंगा, मुझमें जितनी वरदान देने की शक्ति है वो सब इस देवी को दूंगा मैं। मतलब इस महीने में जो भी आपको व्रत करेंगे उसको वरदान देने की एक शक्ति होती है ना, वरदान मिलेंगे, वो वरदान देने की शक्ति मुझमें जितनी है उतनी ही मैं उसको दूंगा, यहां तक कि मेरा नाम भी उसको दूंगा, पुरुषोत्तम। इस तरह से आज से आपको कोई ठुकराएगा नहीं, जो जो लोगों ने आपको ठुकराने का प्रयास किया है वो सब लोग आपके चरणों में आके बैठेंगे, अभी आपका स्वामी नहीं बनेंगे वो, मैं आपका स्वामी बन चुका हूँ। अब जितने लोगों ने आपकी निंदा किया, जितने लोगों ने आपको ठुकराया, वो सब आपके चरणों में आएंगे और सब आपका पूजा करेंगे, सब आपका वंदन करेंगे, सब आपके लिए व्रत रखेंगे, सब आपकी महिमा को जानकर पुण्य भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति आवश्यक है वो आपके चरणों में आकर प्राप्त करेंगे, आप वंदनीय बनेंगे, आप पूजनीय बनेंगे। ऐसा भगवान ने एकदम मालामाल कर दिया अधिक मास की देवी को, प्रसन्न कर दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई वो। जैसे भगवान ने ऐलान किया, घोषणा किया, वरदान दिया, तो सभी देवता इस महीने की पूजा करने लगे, इसका गौरव करने लगे, गुणगान करने लगे, पूजा करने लगे। तो ऐसा ही महीना है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये महीने में पुण्य इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं दान करना चाहिए, लेकिन क्या सोचते हैं, दान करके पुण्य मिलेगा, लोगों को खाना खिलाना चाहिए पुण्य मिलेगा, ये पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए पुण्य मिलेगा, ये सब कुछ बताया हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ये सब कुछ बताया हुआ है क्या क्या करना चाहिए इस महीने में। उपवास करना चाहिए व्रत के रूप में, दान धर्म करना चाहिए, पवित्र स्थान में जाना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के विग्रह का, जैसे जगन्नाथ जी यहाँ पर है, राधा कृष्ण किसी के घर पे हैं, उनके विग्रह की सुगंधित फूलों से पूजा करनी है, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना है और भगवान का नाम लेना है, ये सब कुछ बताया है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये करने से मुझे पुण्य मिलेगा, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, फिर क्यों करना है? करना इसलिए है कि आम तौर में जितना लाभ आध्यात्मिक इससे मिलता है उससे 16 लक्ष गुना लाभ इस महीने में मिलता है। जनवरी के 28 तारीख को आप बैठेंगे, 26 तारीख को समझो झंडा फहराने के बाद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि राम 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 हरे हरे, तो आपको जितना लाभ होगा उससे 16 लक्ष गुना लाभ आपको अधिक मास में हरे कृष्णा करने से होगा। समझ में आपको आया? अब ये 16 लक्ष नंबर से कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि कार्तिक महीना जो है ना वो भी ऐसा ही पवित्र महीना माना है। लेकिन कार्तिक महीने का विशेष यह है कि कार्तिक महीना हर साल में आता है, चतुर्मास से होता है, अभी शुरू हो जाएगा ना अगले महीने से, ये अधिक मास है, अभी चतुर्मास आ गए। तो जब कार्तिक महीना आता है तो कार्तिक महीना को बहुत पवित्र माना गया है, वो राधा रानी का महीना है, राधा रानी स्वयं उसको स्वीकार किया हुआ है, ऊर्जा देवी कहते हैं उसको। तो उस महीने में जो भी व्रत करेगा भगवान का नाम लेगा, दान धर्म करेगा, पुण्य करेगा, धाम में जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी करेगा उसको 1,00,000 गुना लाभ मिलने का घोषणा किया गया है शास्त्र में। मतलब 1 महीना 26 जनवरी को अगर आप 1 मंत्र जपोगे तो कितना लाभ होगा, उससे 1,00,000 गुना लाभ आपको कार्तिक महीने में करने से मिलेगा। सिंपल सी बात क्या है, दिवाली का महीना कौन सा होता है, वो कार्तिक महीना होता है जब दीप जलते हैं सब जगह पे, वो महीने में आप जब करोगे तो आपको 1,00,000 गुना होगा। लेकिन शास्त्र में लिखा है उससे 16 गुना अधिक लाभ अधिक मास में होता है, उसके ऊपर एक और गणित है कि पुरुषोत्तम महीने में हम लोग व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब 3 चीजें उसके अंदर आती है, ध्यान रखना, तपस्या यानी व्रत यानी कोई नियम कोई हम लोग पालन करते हैं, जैसे कि आपका वो होता ना वट सावित्री का व्रत, उसमें सभी जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो उपवास रखते हैं, फिर वट के पेड़ के पास जाते हैं, वो वट के पेड़ की पूजा करते हैं, उसको डोरी बांधते हैं, उसको भोग लगाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, वो सब कुछ करने के बाद में फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम लगाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको भेंट देते हैं, उनकी ओटी भरते हैं, और फिर बाद में उसको उपवास छोड़कर प्रसाद पाते हैं। ये सब मन से करते हैं कि मन से खिलाफ करते हैं, अरे क्या करेंगे सासू बोल रही है इसलिए करना पड़ता है, मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं करने का, मुझे तो आज को वड़ा पाव खाने का दिल था लेकिन आज मुझे उपवास करने को बोला है, ऐसे नहीं है। अधिकतर सौभाग्यवती स्त्रियां जो है वो दिल से वो व्रत करती है। तो नंबर 1 क्या चीज़ है व्रत के अंदर, दिल से करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए, अपने आप की इच्छा से करना चाहिए, कोई बोल रहा है जबरदस्ती इसलिए नहीं करना चाहिए। अरे तो कैसी लड़की है तू, कुछ शर्म तो आ रही तेरे, पहली बार तू ससुराल गई है, पहली वट सावित्री आ रही है, तू बोल रही मम्मी व्रत नहीं करना है, मम्मी समझा रही है फोन पे उसको, डांट रही है उसको, पगली तू कुछ यही सिखाया था तुमने मुझे, मुझे तुमने मुझे मैंने तुमको तो ये फोन पे डांटा, मतलब क्या इच्छा नहीं है, जबरदस्ती की जा रही है, उसको व्रत नहीं कहते हैं। लेकिन अधिकतर जब औरतें इच्छा से करते हैं तो वो व्रत का एक भाग हो गया। दूसरा व्रत का भाग होता है कि ऐसा कुछ करना है जिसमें थोड़ी तकलीफ हो। आप बोलेंगे मैं व्रत लूंगा अभी पुरुषोत्तम मास में, रोज एक गुलाब जाम खाऊंगा, इसमें कैसा तपस्या है, इसके अंदर तपस्या थोड़ी आनंद ही आनंद है उसके अंदर व्रत का मतलब थोड़ा कष्ट होना चाहिए थोड़ा सा। बोलेंगे कि मैं अभी मुझे गुलाब जाम बहुत पसंद है, इस महीने में नहीं खाऊंगा, ये व्रत है, लेकिन इच्छा से लिया आपने, जबरदस्ती नहीं किया है। तो आप बच्चे को बोलेंगे देखो मैं भी व्रत कर रहा हूँ, अभी व्रत कर रहे हैं, अभी आपको आइसक्रीम पसंद है, इस महीने में आइसक्रीम नहीं खाना है, तो वो जबरदस्ती हो गई। और तीसरी बात क्या है, पहली बात क्या बताया मैंने, स्वेच्छा, दूसरी बात क्या बताई, पीछे से बोलो ना, कोई वो पीछे कोई सौभाग्यवती नहीं क्या बोलो बोलो क्या बोला मैंने, क्या थोड़ा कष्ट होना चाहिए। और तीसरा, ये दोनों चीजें किसके लिए करना है, नहीं मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मेरे को पति होना चाहिए, सौभाग्यवती रहना चाहिए लंबे समय तक, इसलिए मैं कर रही हूँ, तो व्रत में नहीं आता है वो। जो व्रत भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं उसको व्रत कहते हैं, बाकी तो स्वार्थी व्रत है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये सब खुद के लिए करेंगे तो उसमें व्रत कुछ होता नहीं। व्रत उस चीज को कहते हैं जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। भगवान संतुष्ट होने पर और बहुत लोग संतुष्ट हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, लेकिन प्राइमरीली किसको संतुष्ट करने का प्रयास करना है, भगवान को, यह समझना आपको जरूरी है। तो ऐसा व्रत जो है वो इस महीने में करना है अपने को, उसको पुरुषोत्तम व्रत कहते हैं। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत करता है, अब ये भी श्री कृष्ण भगवान ने उस देवी को बताया था, उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति इच्छा से प्रेम से इस महीने में व्रत करता है वो उस व्रत को पूर्ण करने के बाद में इस जीवन के अंत में मेरे धाम में पहुंच जाएगा। इतना बड़ा वरदान दिया है। और ऐसा भी नहीं कहा कि मैं अभी इसके बाद में व्रत कैसे करना है वो बताने जा रहा हूं, लिख के रखो, ऐसा नहीं बताया। व्रत आपको तय करना है, इतना चॉइस दिया आपको, सबसे आसान से लेकर सबसे मुश्किल तक आप व्रत कर सकते हो। लेकिन इसमें एक सुंदर गाइडलाइन भी दिया है जो हमारे संत लोग बताते हैं, वो कहते हैं बहुत कष्ट वाला व्रत नहीं करना चाहिए। समझो अभी मैंने आपको बताया कि अरे व्रत करना चाहिए, इसको इतना लाभ है वगैरह वगैरह, अभी ये व्रत करेंगे ना इसमें सबसे ज्यादा लाभ है, वो क्या व्रत है, आपको रोज उपवास करना है और रात में केवल एक बार फल खाना है 30 दिन तक। 2 दिन आप करेंगे बड़े जोश में, तीसरे दिन क्या होगा, भक्ति विधान के कैजुअलिटी में एडमिट हो जाएंगे हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, जो हाइपो, सब कुछ हाइपो हो सकता है ना। क्योंकि मुझे कल ही प्रवचन के बाद में एक माता जी मुझे मिलने आई, बोली प्रभु जी मैंने तो व्रत रखा था लेकिन मुझे इतनी उल्टियाँ हुई, इतना डिहाइड्रेशन हुआ कि मैं एडमिट हो गई और मेरे को आईवी लगाना पड़ा, प्रभु जी मैं क्या करूँ मैं, मेरा तुरंत व्रत बंद करो, क्योंकि जिस व्रत को करने में तुम इतना कष्ट पा रही हो। तो कष्ट जब होता है आदमी को तो आदमी का ध्यान कहाँ रहता है बताओ, भगवान पर नहीं रहता है, कष्ट के ऊपर रहता है। समझो आपको उपवास करने से बहुत सर दर्द हो रहा है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, सर में रहेगा जहां पर दर्द हो रहा है। यू अंडरस्टैंड, इतने कष्ट का व्रत क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कष्ट का व्रत करने पर कष्ट पर अधिक ध्यान होता है और भगवान का ध्यान हट जाता है, तो व्रत आपका समाप्त तो हो गया उधर। यू अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो मैंने कहा माता जी बिल्कुल व्रत मत करो, आप एकादशी का व्रत करो, वो भी फल फूल खा के करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपके व्रत के समय भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जब अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भूख लग रही है, हरे कृष्णा, पेट में दुख रहा है, हरे कृष्णा, सर में दुख रहा है, हरे कृष्णा, तो कैसा व्रत है वो, कोई मतलब ही नहीं उसका। हमको थोड़ा कष्ट होना चाहिए, जैसे कि आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आप दिन में हफ्ते में 3 बार खाते हो, अभी आप नहीं खाने वाले हो तो आपको थोड़ा कष्ट होगा। कहाँ कष्ट होगा, मन में कष्ट होगा, शरीर में कष्ट नहीं होगा, आपको भोजन तो मिल रहा है दूसरा, खाली मन में कष्ट होगा, अरे गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन नहीं, लगे लेकिन आपको हाइपोटेंशन नहीं होगा उसकी वजह से, एडमिट नहीं होंगे आप आईवी लगाने के लिए। ये मेरा कहने का मतलब है। तो इस महीने में जो व्रत करेगा वो इस व्रत का अकाउंट जब जमा हो जाएगा ना, कैसे करना है व्रत, स्टार्ट वन से स्टार्ट लास्ट डे तक करना है आपको ये व्रत पूरा करना है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस देवी को वरदान दिया है, जो भी इस महीने में व्रत करेगा वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम में पहुंचेगा। एक बार नहीं, कई बार, कई जगह पर अलग अलग वर्णन आता है उसका, सब जगह यही लिखा है। नारद मुनि ने भी दोहराया है, वाल्मीकि मुनि ने भी दोहराया है इसको, ब्रह्मा जी ने भी दोहराया है, बोलो रिपीट किया है उसी बात को। तो क्या क्या व्रत कर सकते हैं आप इस महीने में, मैंने सब लोगों को ऐसा बताया है, एकदम सिंपल व्रत करो, ज्यादा शरीर को, मन को, बुद्धि को कष्ट मत दो। क्या करो, अच्छा आप बोल रहे मैं तो रोज 4 माला करती हूँ, ठीक है, आप बोलो इस महीने में 5 माला करेंगे, 1 माला का आपका व्रत हो गया एक्स्ट्रा। जो लोग 16 माला करते हैं वो बोलेंगे मैं 18 माला करूंगा इस महीने में, और वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं वो बोलेंगे कि मैं ना रोज 1 भगवद्गीता का श्लोक पढ़ूंगा, उसका अर्थ पढ़ूंगा और श्लोक पढ़ूंगा। कोई बोलेंगे मैं 1 भागवत का श्लोक पढ़ूंगा, बहुत सिंपल हो गया ना, उसमें कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, गुलाब जामुन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, गुलाब जामुन खाओ, 1 श्लोक पढ़ो, सिंपल आध्यात्मिक व्रत हो गया ये, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, आप कुछ ले रहे हो, कुछ स्वीकार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रोज 1 कथा भगवान की पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण की 90 कथाएं हैं, दशम स्कंद में 89 कथाएं हैं, उसमें रोज 1 कथा पढ़ते हैं, 30 कथा पढ़ेंगे रोज, प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग रोज मंदिर जा नहीं पाते हैं तो सिंपल व्रत करते हैं कि मैं रोज मंदिर जाके दर्शन करूंगा भगवान का, सिंपल। या घर में मैं रोज आरती नहीं कर पाता हूँ, ये महीने में रोज सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलेगा मैं आरती करूंगा, या मैं रोज भगवान को दीपक लगाने का मुमकिन नहीं है लेकिन ये महीने में रोज मैं 1 दीपक भगवान को अर्पण करूंगा। इतने सिंपल व्रत आप ले सकते हो, लेकिन आपको स्टार्ट day 1 से लेकर day 30 तक करना है। अभी लेट हो चुका है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, आज से भी चालू कर सकते हो, लेकिन आज से आपको रोज करना है उसको। इतना करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सोचो आप 16 लक्ष बार लाभ मिलता है उसका। और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, यही व्रत अगर आप इस महीने के अंदर भगवान की तीर्थ स्थान पर जाकर करेंगे तो और 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा। तो कितना हो गया वो, बोलो कितने गुना हो गया, 16 लाख बार तो ऐसे ही हो गया बॉम्बे में करने से हो गया, 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 160 कोटी हो गया वो, 160 करोड़ टाइम्स, सोचिए आप। मतलब मैं अभी ये व्रत यहाँ पर बॉम्बे में कर रहा हूँ, हाँ, और अभी मैं जाऊँगा मायापुर को 7 दिन के बाद और वहाँ पर जो करना है वो करते रहूँगा, तो ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया वो। कितने दयालु है भगवान, हम लोग कैसा है दिवाली में, दिवाली की भारी छूट, एक लहंगा लेंगे दो लहंगा फ्री, ऐसा होता है ना, एक साड़ी पे दो साड़ी फ्री, ऐसा नहीं होता है, ऑफकोर्स दो पे एक फ्री होती है आप ज्यादा जानते हो मेरे से। तो ये कैसा है, अपना माल ज्यादा बेचने के लिए लोग ऐसा ऐसा ट्रिक करते हैं, कॉस्ट वॉस्ट ले लेते हैं आपसे अच्छी तरह से, आपको उल्लू बना दें, लेकिन आप लोग उधर ही एक लेगा दो फ्री है, सर सर दो टी शर्ट ले लो आपको इसमें 30% डिस्काउंट दोनों में मिलेगा, तो आपको ऐसा अटेम्प्ट करते हैं, सर एक पैंट ले रहे दूसरी पैंट लेंगे तो एक पैंट में 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ऐसे कंपनी का लिखा है बोर्ड लिखा है। तो उससे क्या होता है, ग्राहक जो होता है ना वो ज़्यादा लेता है, सोचा था एक पैंट लेके आऊँ, तीन पैंट के घर पे आता है, और कंपनी तीन पैंट में पूरा पैसा अपना वसूल कर लेती है, हमको लगता है कि वाह वाह देखो मैं कितना डिस्काउंट लेके आया तो लोग अपना माल बेचने के लिए ऐसा अलग अलग तरीके से ट्रिक करके आपको बेचते हैं। भगवान क्या करते हैं, अलग अलग ट्रिक करके आप लोगों को अपनी ओर लाने का प्रयास करते हैं। तो कार्तिक में एक लाभ देके रखा है आपको, अधिक मास में एक लाभ देके रखा है, हाँ चैत्र में एक लाभ देके रखा है, मार्गशीर्ष में बोलेंगे ये मार्गशीर्ष में ये करेंगे तो ऐसा होगा, माघ में जाकर नदी में स्नान करेंगे तो इतना पुण्य बताया कि माघ व्रत माघी मेला होता है ना, इलाहाबाद में होता है ना माघी मेला, एक महीने का होता है, हर साल आता है वो जनवरी में, केवल नदी में स्नान करने से कितने सारे बेनिफिट बताए गए हैं। तो ये भगवान का ग्रैंड रिडक्शन सेल है, जिसमें भगवान अपनी जो कृपा है प्रचुर मात्रा में आपको देना चाहते हैं, और इतना करने पर भी अगर मनुष्य उसका लाभ नहीं लेगा तो और भगवान क्या कर सकते हैं, इतना गुना आपको लाभ दे रहे हैं उसका। अभी वही तुलसी है वो तो हमारे साथ हमेशा रहती है, जब भी देखिए तुलसी देखी जुड़ाया प्राण माधव तो शनि जानी, इनको देख के ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, लेकिन इसको आप कार्तिक में देखोगे तो आपको हजार लक्ष गुना उसका लाभ मिलेगा। आप लोग रोज तुलसी को दल देते होंगे, लेकिन अगर आपको ये सोच कर देंगे कि हाँ ये कार्तिक महीना है और प्रेम से भक्ति से अर्पण करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, वही चीजें आप कर रहे हैं लेकिन आपको उसको कई गुना लाभ मिल रहा है। तो क्या क्या करना चाहिए, एक मैंने बताया भगवान का नाम, दूसरा भगवान के भक्तों का संग, तीसरा भगवान के विग्रह का पूजा, भगवान की मूर्तियों की पूजा, चौथा श्रीमद् भागवत यानी कि भगवान की कथा का श्रवण, पठन या श्रवण मतलब बोलना या सुनना, पांचवा भगवान के धाम में निवास। इसलिए एक दिन हो आपको, एक दिन है तो आप यहाँ से बाणगंगा जाओ, वो भी एक तीर्थ स्थान है, यहाँ पर क्या हुआ था मालूम है किसी को, कितना मालूम है, वेरी गुड, बाणगंगा में लक्ष्मण जी ने भगवान प्रभु रामचंद्र की आदेश पर गंगा जी का मंत्र बोलकर बाण मारा था और वहां से गंगा जी को प्रकट किया था। तो गंगा जी तो इलाहाबाद में भी है, हरिद्वार में भी है, गंगोत्री में भी है, सब जगह है, लेकिन हमारे बाणगंगा में भी है, वाल्केश्वर में। आज भी आपको पता चलेगा पत्थर के एक क्षेत्र में से कंटिन्यूअस मीठा पानी आ रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है उसमें से, एकदम शुद्ध मिनरल वाटर, एकदम मीठा ठंडा एकदम, कभी भी आप जाके पी सकते हो, स्नान कर सकते हो, हमारे मंदिर के बहुत पास में है, बहुत विशाल कुंड है वो, वहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई है। तो अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, संडे का ही एक शाम है, आप वहाँ जाइए इस महीने में, बिल्कुल बिना भूले जाइए, बच्चों को भी अच्छा पिकनिक हो जाएगा, वहाँ पर स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, बैठ के प्रार्थना कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और आ जाइए। आपके पास दो दिन है तो आप नासिक जाइए, गोदावरी का सहारा मिलेगा आपको, प्रभु रामचंद्र का दर्शन होगा, हाँ लक्ष्मण जी का दर्शन होगा, गोदावरी कपिला का संगम मिलेगा, तपोवन दर्शन होगा आपका, त्र्यंबकेश्वर दर्शन कर सकते हैं आप, उधर कुशावर्त का दर्शन होगा, वहाँ से गोदावरी का उगम हो गया है, कितने पवित्र स्थान है। दो दिन है तो आप नासिक जाके आ सकते हैं, सात दिन है तो वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, मायापुर जाइए, वहाँ का दर्शन करके आइए, वहाँ की पवित्र नदी में स्नान कीजिए। तो मैंने आपको बताया क्या, पांचवी बात तो क्या बताई, धाम का निवास मतलब तीर्थ स्थान में जाकर दर्शन करना और वहां रहना, और छठवां बताया गया है तुलसी जी की पूजा, तुलसी को जल देना, तुलसी को फूल चढ़ाना, तुलसी को प्रदक्षिणा करना और दीपक चढ़ाना, ये छह चीज करने से आपको दिव्य दिव्य लाभ होगा। और उसके आगे भी चीज बताई गई है वो है उपवास, आपकी क्षमता के अनुसार, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपको हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। कुछ लोग दिन में नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, रात को भोजन करते हैं, एक बार खाते हैं, कुछ लोग दो बार खाते हैं, एक बार फल खाते हैं, जैसा भी आपको जितना भी हो सके लंघन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपवास के बाद में बताया गया है कि इस महीने में दान धर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद के लिए नहीं करना चाहिए, कि मुझे लाभ मिलेगा। दान धर्म का मतलब क्या होता है, दान किसको कहते हैं? दान करते समय भी एक ऐसा व्याख्या किया गया है कि दान देने में थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए। अभी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के समझो, उन्होंने आपको 100 रुपया दिया और वो 100 रुपया निकालते समय 900 रुपया ऐसा जमीन पे गिर गया, समझो उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। चलो 1 रुपया मैंने 100 रुपया का नोट किसी के हाथ में दिया, बाकी 9 नोट किसी ने उठा लिए, नो प्रॉब्लम सर। और फिर कहीं जा रहे हैं तो किसी ने उनका 10,000 रुपये का पॉकेट मारा, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन 300 करोड़ का नुकसान होगा कंपनी में तो जरूर बैठेंगे मीटिंग में, क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे कैसे हुआ, किसकी मिस्टेक है, पकड़ो उसको, उसको पनिशमेंट दे दो, मेमो दे दो उसको। तो उनके लिए 300 करोड़ जब होते थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा सा चिमटा लगता है उनको। और हम जैसे लोगों को 100 रुपये गिर गया तो भी दुख होता है, अरे 100 रुपये में मंदिर जाके आता था ट्रेन से, अभी 100 रुपये गया मेरा। तो दान में एक प्रिंसिपल है कि थोड़ा बहुत कष्ट होना चाहिए, जो बिना कष्ट का दिया हुआ दान उसका पूरा लाभ नहीं होता है। और दान 3 प्रकार के होते हैं, समझो कोई जुआ खेल रहा है, समझो जुआ, 4 लोग जुआ खेल रहे हैं और एक हार जाता है, पूरा पॉकेट खाली होता है, दूसरा बोलता है ये ले भाई मेरे से 500 रुपये लोन ले ले, लेकिन आगे का खेल खेल, वो भी एक दान है, उसको कहते हैं तमोगुणी दान, गलत काम के लिए दिया हुआ दान है वो। तो कोई शराब पीने को बैठा ऐसा और 2 पैक मार लिया और वो बोला अरे भाई पैसा ही नहीं है, कोई बात नहीं, 100 रुपये ले ले, एक और पैक पी लेना, कोई बात कल दे देना वापस मुझे। बोला कितना फ्रेंड, कितना दे, इसे रियल फ्रेंड, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, जरूरत के समय काम आने वाला मित्र सच्चा होता है। लेकिन दान तमोगुणी है ये। फिर दूसरा दान होता है रजोगुणी दान, वो क्या बोलेंगे, ये काम लो मेरा 5 लाख रुपये लो, उधर मेरा बोर्ड लिखो डोनेटेड बाय, है ना, मेरा नाम होना चाहिए या मेरी मम्मी का नाम होना चाहिए, मैं दूंगा डोनेशन आपको लेकिन मेरा नाम होना चाहिए, या अनाउंसमेंट होना चाहिए, अनाउंसमेंट कि ये फलाना फलाना जो बिल्डिंग है ये इनके नाम पे दिया गया है, मतलब किसी हेतु से दिया हुआ दान है कि मुझे भी कुछ उसमें यश कीर्ति नाम मेरा होना चाहिए। और तीसरा है सात्विक दान, मतलब दिल से किसी गरीब को मदद कर रहा है, वो किसी को खाना खिला रहा है, नाम नहीं चाहिए उसको, लेकिन किसी को खाना खिला रहा है, किसी को कपड़े दे रहा है, किसी को नोटबुक बांट रहा है, किसी को दवाई दे रहा है, किसी को कंबल बांटा जा रहा है। लेकिन इसमें भगवान का ही नहीं है, नोबडीज भगवान के इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, वो उसकी दया है वो दे रहा है। चौथे प्रकार का दान होता है दिव्य दान, वो केवल भगवान के लिए ही दिया जाता है, चाहे वो अन्न बांट रहा है, वो कैसे बांटेगा अन्न, वो भगवान को अर्पण करेगा और प्रसाद बांटेगा, लड्डू वही है वो देने वाला है, लेकिन लड्डू वो पहले क्या करेगा, एक आदमी ऐसे दे देगा, दूसरा पहले भगवान को अर्पण करेगा तुलसी रख के, फिर प्रसाद के रूप में सबको बांटेगा, वो भी अन्नदान ही है लेकिन वो प्रसाद दान हो गया, तो उसको दिव्य दान कहते हैं। और कुछ पैसे आप दे रहे हैं, बोल रहे मंदिर में ये भगवान को भोग लगाने के लिए है, ये भगवान के फूल के लिए है, ऐसे श्रृंगार के लिए मैं दे रहा हूँ, ये वस्त्र के लिए भगवान के हैं, ये भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है अभी मेरा रोड के अंदर, उसको आपने दिया, अभी ये बहुत बड़ा दान है। अभी इस महीने में अगर आप मंदिर को निर्माण में दान देंगे ना, 10 रुपये शायद देंगे, आपको लक्ष गुना लाभ होगा उसका, क्योंकि अधिक मास का महीना है और भगवान विष्णु के मंदिर निर्माण के लिए आप दान दे रहे हो, कितना सुनहरा मौका है। उन्होंने वहां लिखा है कलश अभिषेक 30,000 रुपये, समझा आपको शक्ति नहीं है उसकी, तो आप 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये महीने में वो देने से, मंदिर तो कब से निर्माण हो रहा है, जनवरी मंदिर में मंदिर निर्माण हो ही रहा था तभी आप 100 रुपये देते और आज देते, तो उसका बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये अधिक महीना है, समय समय में अलग अलग फल मिलता है। तो ये महीने में दान की विधि बताई गई है। और मैं ये सब नॉलेज आपको क्यों दे रहा हूँ, आप ऐसे अज्ञान में दान मत करना, आप दान दे ही रहे हो, अगर 100 रुपये खर्च आपका होने वाला है तो आपको सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ उसका मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलना चाहिए, आत्मा के सर पर लाभ होना चाहिए आपको। शरीर के सर पर लाभ, कपड़े चाहिए, फेम चाहिए, यश चाहिए, अच्छा पति चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ नष्ट होने वाली है, लेकिन आध्यात्मिक जो शक्ति होती है ना, आध्यात्मिक लाभ जो होता है वो समय के साथ में नष्ट नहीं होता है, हमेशा रहता है वो। आज आपने 100 रुपया मंदिर निर्माण में अधिक मास में दान देकर जो भगवान के भक्ति में शक्ति या लाभ प्राप्त किया वो आपके साथ ही रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसको अक्षय खाता कहते हैं, वो अकाउंट कभी भी समाप्त नहीं होता है, ऐसा भक्ति का धन प्राप्त होता है। तो एक बताया मैंने उपवास, दूसरा बताया दान, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, और तीर्थ स्थान की यात्रा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कुछ लोग महीना भर उधर ही रहते हैं, प्लानिंग करके साल में छुट्टी वुट्टी लेके अमेरिका से आके एक महीना उधर ही रहते हैं। कुछ लोग कार्तिक महीने में शुरू आते हैं, दो महीने पहले आते हैं और दो दिन बाद तक 34 दिन उधर ही रहते हैं पूरा प्लानिंग के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते तो वो 4 दिन रहते हैं, 7 दिन रहते हैं। आप जैसे लोग एक दिन शायद जाके आएंगे बाणगंगा, कुछ लोग दो दिन नासिक जाके आएंगे, लेकिन जाना जरूर चाहिए। अब भाव बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं हमने सुना था प्रवचन में जाना ही चाहिए, भाग रहे सब लोग, लेकिन भगवान के ऊपर जो ध्यान है ना वो हटना नहीं चाहिए। ये व्रत करते समय भगवान केंद्र स्थान में होने चाहिए, आपके मन में, चित्त में, बुद्धि में, विचारों में भगवान का ध्यान होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार की व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये महीने में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सत्य पर चलना चाहिए, इस महीने में झूठ बोलेंगे बहुत आपका नुकसान होगा, बहुत मामूली झूठ बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सफेद झूठ ऐसे ही बोल दिया, अरे तू किधर था, हाँ मैं तो उधर ही था, नहीं मैंने आपको चर्चगेट में देखा था, नहीं नहीं चर्चगेट नहीं था, मैं चादर में था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन झूठ तो झूठ ही है ना, आप थे नहीं वहां पर, लेकिन आप बोल रहे मैं वही था, अरे इस समय वही था मैं, पूछो आप दुकानदार को, पूछो मैं बड़ा खा रहा था उधर तो इतने हल्के फुल्के झूठ से लेकर बड़े से बड़ा झूठ ये महीने में नहीं बोलना है आपको, जितना हो सके उतना कोशिश करना है नहीं बोलना है, और सत्य बोलना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है क्रोध नहीं करना है इस महीने में, जहां तक हो सके, बहुत मुश्किल चीज है लेकिन जहां तक हो सके क्रोध पर काबू करने का प्रयास करना है। अब ऐसा व्रत क्यों बताया है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि इससे भगवान के ऊपर का ध्यान हट जाता है। समझो अभी मुझे कथा करते करते गुस्सा आ गया, समझो तो कथा बंद हो जाएगी और कुछ बोलूंगा मैं तुरंत मन में से, क्रोध आते ही तुरंत भगवान से हम दूर हो जाते हैं, एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर भगवान और आप जुदा हो जाते हैं। मंदिर में खड़े भगवान के दर्शन कर रहे हैं, किसी ने आपको धक्का दिया, ऐसा गुस्सा हो गया ऊपर, क्या समझते हैं आप अपने आप को, मैं खड़ा था आप दूर से आकर धक्का देते हो, कैसे इंसान हो आप, अरे लेकिन भगवान सामने खड़े हैं उनको देखो आप, इतना गुस्सा मत करो, क्या हुआ धक्का दिया तो भूल जाओ उसको, 3 मिनट आपके वेस्ट हो गए ना भगवान के सामने खड़े होकर भी, वो आपके सामने खड़े आप उनके सामने खड़े हैं, लेकिन 3 मिनट आपके क्रोध करने में वेस्ट हो गए। कभी कभी हमने भगवान के सामने लोगों को मारा मारी करते हुए भी देखा है किसी फालतू चीज के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, उनको समझा नहीं वो क्या करने के लिए आए थे, और जो करने के लिए आए थे उस समय क्या नहीं करना चाहिए ये भी उसको ज्ञान नहीं था। तो ये ट्रेनिंग की बात है, इसके लिए परवरिश जरूरी है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है जो इस महीने में नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते ना, कुछ काम नहीं धंधा नहीं ऐसे बैठ जाते हैं, फिर इसने कैसा किया उसने कैसा किया, ऐसा कुछ मतलब नहीं, कुछ समय नहीं, कुछ काम नहीं, विषय कुछ नहीं, लेकिन बैठे बैठे चालू करते हैं, फिर उसका बुरा बोलते हैं, फिर उसका बुरा बोलते हैं, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन कैसा बुरा आदमी है वो बोलते हैं, फिर वो नरेंद्र मोदी, फिर वो इंदिरा गांधी, फिर वो सब जिसका कोई कनेक्शन नहीं है सबकी निंदा करते हैं बैठ के। उसके मराठी में बोलते हैं चकाटे पिटने, और गांव में कैसा होता है ना, एक झाड़ झाड़ ऐसा वो चबूतरा होता है, वो शाम को सब लोग ऐसा आके बैठ जाते हैं, फिर दुनिया भर की बात नहीं, चाइना का वो प्रधान कैसा चोर है, फिर जर्मनी का वो चांसलर कैसा चोर है, फिर वो पाकिस्तान का हरित तो बदमाश नंबर 1 है, और फिर यहाँ का ऐसा है, फिर वहाँ का वैसा है, आपका कनेक्शन क्या, आप तो खेती कर रहे हो गाँव में, आपके ओपिनियन को पूछता कौन है लेकिन फिर भी लोगों को आदत होती है, दुनिया भर की बातें ट्रेन में, जर्नी में, सफर में करते रहते हैं, उसको कहते हैं गॉसिप इंग्लिश में, उसको कहते हैं संस्कृत में प्रजल्प, यानी कि बेफजूल की बातें, अधिकतर निंदामयी बातें, अधिकतर उसमें लोगों की निंदा होती है, किसी का अच्छा नहीं होता है, ऐसे नहीं बोल रहे कि वो देखो वो माता जी कितनी अच्छी है, वो देखो हमारे सर कितने अच्छे हैं, जो हमारा हॉस्पिटल कितना अच्छा है, हमारा देश कितना अच्छा है, हमारा सरपंच कितना अच्छा है, हमारा आमदार कितना अच्छा है, ऐसा किसी का अच्छाई कभी करते नहीं, ऐसे समय पर अधिकतर बुराई करते रहते हैं। तो ये महीने में खास कहा गया है, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, भक्त हो या नहीं भक्त हो, किसी की निंदा नहीं करनी है। और हो सके तो अच्छा बोलना है, नहीं हो सकता है चुप रहो लेकिन बोलो मत, ऐसा मतलब मराठी में क्या बोलते हैं, वो अपने चूल्हे पर अपने दूध का पौत्र रख दिया और गैस फुल कर दिया, क्या होता है दूध ऐसा फैलता है उसमें से, ऐसा उठ उठ के ऊपर से नीचे गिरता है, वैसा हमारा मन में से किसी की निंदा जो है ना, ऐसा वो दूध के पात्र की तरह दूध ऐसा बाहर गिरता है ना, वैसे अनकंट्रोलेबली इट इज गोइंग आउट ऑलवेज, तो उसको हमको रोकना है। ये सब क्यों करना है, क्योंकि हमारा ध्यान भगवान पर रहे। व्रती व्यक्ति जो होता है ना, व्रती भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान ने वादा किया है कि जो व्रती व्यक्ति है, जो व्रत करने वाला इस महीने में व्यक्ति है, उसके अंदर सारे देवता और मैं स्वयं निवास करता हूं इस महीने में, वो व्यक्ति संग करने लायक हो जाता है, देवता भी उसका संग करना पसंद करते हैं, इतना व्रती लोगों का महात्म्य है। और ऐसे व्रती व्यक्ति का कभी अपराध नहीं करना चाहिए इस महीने में। जो व्यक्ति आपको पता है कि पुरुषोत्तम का महीने का सही रूप में सही भाव में व्रत कर रहा है, उसका अपराध कभी नहीं करना चाहिए, और ऐसा अपराध आप करेंगे तो भगवान कृष्ण कभी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय हो जाता है, सारी भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है वो छोटे समय के अंदर, और जो प्राप्त करता है ना वो कभी खोता नहीं बाद में कभी, अरे आज 1000 रुपये कमा लिया, अरे उधर गया शू शॉप में 890 रुपये का जूता ले लिया, गया 110 ही बच गया, फिर बाहर आया पानी पूरी खाया खत्म हो गया, फिर दोबारा 1000 रुपये लाना पड़ेगा आपको वो एंजॉय करने के लिए, वैसा नहीं होता है इसके लिए। एक बार आपने कमा लिया वो लाभ, वो आपके अक्षय खाते में परमानेंट जमा होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसा ये महान महीना है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी किसी संस्था में कोई बताते क्या कि प्रभु जी आप हमारे एम्प्लॉई हो, ये पुरुषोत्तम का महीना है, आप व्रत करो आपको लाभ होगा, बोले काम करो 8 घंटा 9 घंटा काम करो, और कोई फालतू बड़बड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बिजनेस का काम है बिजनेस होना चाहिए बस, हमको किसी से मतलब नहीं। लेकिन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल थोड़ा निराला है, इसमें ऑन ड्यूटी हम प्रयास करते हैं लोगों को समझाने के लिए कि कैसे आपका काम करते करते आपको यहाँ पर दिव्य लाभ मिल सकता है और आपको लेना भी चाहिए, इसका नॉलेज भी देते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। यहाँ तक कि नहीं कि हमारे अस्पताल से हम लोग कह रहे हैं यात्रा करनी चाहिए बहुत अच्छा होता है आप जाइए वगैरह वगैरह, तो बोले प्रभु जी कहाँ है महापुर, वृंदावन कैसे जाना है, वहाँ रहने की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर खाएंगे, क्या क्या देखना है उधर, कुछ पता नहीं है, तो कैसे यात्रा करेंगे प्रभु जी यहाँ पर अच्छा है हम लोग। लेकिन हम लोग यात्रा निकलते हैं पूरी व्यवस्था करते हैं, आपको खाली कुछ रुपये भरने बस, बाकी वहाँ सारी रहने की खाने की कहाँ घूमना है समय कैसे इस्तेमाल करना है कौन सी कथा कहाँ पर करेंगे सारा प्लानिंग हम करते हैं, आपको खाली यात्रा में आना है। ऐसे कोई हॉस्पिटल देखा है क्या आपने आज तक, मतलब मेरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, मैंने भी देखा नहीं है तो ये लाभ जो है ना वो आपको लेना चाहिए, इसीलिए हम इस महीने में अभी लोगों को मायापुर लेके जा रहे हैं। और कौन आ रहे हैं मायापुर में, कई डॉक्टर्स आ रहे हैं अपने परिवार के लोगों को लेकर, कई पेशेंट हमारे जो ठीक होकर यहाँ पर डिस्चार्ज होकर गए हैं वो अपने परिवार को लेकर यात्रा में आ रहे हैं, और कई हमारे आप लोग जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारी यात्रा में आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, क्योंकि आपके बहाने मुझे भी लाभ मिल रहा है, मैं भी जाऊँगा गंगा जी में स्नान करूँगा आचमन करूँगा रोज भगवान के दर्शन करूँगा, अलग अलग लोग देश जगह पर जाएंगे वहाँ पर लीला करेंगे वहाँ बताएंगे लीला उसकी कीर्तन करेंगे थोड़ा दान धर्म करेंगे आपके नाम से, तो ये सब जो है ये दिव्य लाभ है। करने आए थे नौकरी पहुंच गए भगवान के धाम में, ये आपको पता चलेगा जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो पैथोलॉजिस्ट बनकर भक्ति वेदांत में गई थी लेकिन इसकी वजह से आज मैं भगवान के साथ में भगवान के धाम में निवास कर रही हूँ, और मैं भी यही कहूँगा मैं भी नौकरी करने के लिए आया था लेकिन पहुंच गया गौलोक धाम। तो ये भागवत में लिखा है कि आप जो भी कुछ करते हो लाइफ में, चाहे डॉक्टर हो नर्स हो वकील हो पुलिस हो पॉलिटिशियन हो हाउस वाइफ हो घर की समझो कुछ भी आप करते हो, लेकिन अगर वो काम करने की वजह से अगर आपके भगवान के प्रति हृदय में प्रेम निर्माण होता है तो ही आपका काम जो है वो सही है, और अगर वो सारा चीज़ कर्तव्य निभाने से कष्ट करने से बच्चों को पालने से परिवार को पालने से नौकरी करने से ये सब कुछ करने से अगर न उत्पाद ये तही रतिम, अगर भगवान के प्रति रति या प्रेम आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है श्रम एव ही केवलम, ये सारा एफर्ट आपका वेस्ट हो गया गधा मजदूरी हो गया यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन में आपको जो भी करना है उसका एंड रिजल्ट जो है वो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, और वो करने से प्रेम उत्पन्न होता है तो आपका काम जो भी आप कर रहे हो, चाहे पैथोलॉजी का टेस्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो सफल है, यशस्वी है, वो परिपूर्ण हो गया, वो इट हैज कंप्लीटेड इट्स पर्पस, फुलफिल्ड इट्स पर्पस। ऐसा ही पवित्र महीना है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं इसकी, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में बताया ताकि आप ये नहीं कह सकते हो अरे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो आप लोग ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज जो बताया आपको उससे बहुत कठिन कठिन व्रत हमारे भक्त लोग मंदिर में करते हैं, उसमें से आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको वो बताया कि जो बच्चा भी कर सकता है, आप तो बड़े बुजुर्ग हो, बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। और अगर आप इस व्रत को नहीं करते हो और निग्लेक्ट करते हो, समझो बहुत लोग देखता हूँ बाहर अभी भी शराब पी रहे हैं, इस महीने में शराब के अड्डे में जा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, पता भी नहीं है, बताएंगे तो और चप्पल गिरेंगे आपके सर के ऊपर, क्या समझते हो आप मुझे उपदेश करने जा रहे हो, ऐसा भी सुनने को मिलेगा आपको, या वो व्रत की निंदा करेंगे या व्रत का भी अपराध करेंगे। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि वो अनंत काल तक नरक की यातना भोगेगा जो पुरुषोत्तम महीने में ऐसा निग्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों को ये नॉलेज मिल रहे हैं और कुछ उसमें से आप लोग हो, मैं हूँ उसमें से, तो मुझे भी सुनने को मिला, मैंने भी ये समझ गया मैं कि क्या करना है, और मैं उसको अपना भी रहा हूँ और मेरे जीवन में फॉलो भी कर रहा हूँ, और आपको बताने का मौका भी मुझे मिल रहा है। फिर भी कितने लोगों को बता रहा हूँ मैं, अरे दुनिया में लाखों लोग करोड़ों लोग रहते हैं और मैं शायद कुछ सैकड़ों लोगों तक पहुँच रहा हूँ, तो बड़ा नंबर नहीं है, मतलब हम लोग बहुत थोड़े नंबर के हैं जिनको ये जानकारी हो रही है, और अगर जानकारी होने के बाद भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि आप दुर्भाग्य हो, क्योंकि आप तो बहुत कम लोग हो जिनको ये जानकारी प्राप्त हो रही है, और फिर भी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी अरे कौन करेगा इसको यार, टाइम किसको है करने के लिए, ऐसा करके छोड़ देंगे, तो इट इज़ बैड लक, उसको दुर्भाग्य कह सकते हैं। तो आप लोगों का भाग्य का उदय होना चाहिए, आप लोगों को सद्भाग्य होना चाहिए, सौभाग्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज प्राप्त हो रहा है, और करना बहुत सिंपल चीज़ है, और वो करने से आपको अति लाभ होगा। और एक सिंपल सा व्रत है, आप में से सब लोग घर में शायद हर रोज भगवान को भोग लगाकर नैवेद्य प्रसाद नहीं खाते होंगे, शायद कभी कभी खाते होंगे, भक्ति विधान में खाते होंगे। ये सिंपल सा व्रत भी आप कर सकते हैं कि ये महीने में हम लोग केवल वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगाया होगा, जो प्रसाद के रूप में आता होगा, तो भी आपको बहुत लाभ है इस महीने में। हम लोग तो सालों में 12 महीने और सालों साल भी यही खाते आ रहे हैं, समझो आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये महीने में कर सकते हो। इस तरह से ये व्रत जो करेगा वो भगवान को प्रिय होगा, देवता लोगों को प्रिय होगा, और जीवन के अंत में इसी व्रत की वजह से भगवान के धाम की, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।